एक दिन रात में उन्होंने देखा पूरब की तरफ में कोई चीज बड़ी चमकीली ज्योति सी दिख रही है। हरि नाम करते हुए थोड़ी देर के बाद में देखा कि वो अदृश्य हो गई। दूसरे दिन फिर उस पर चढ़े, लोगों से पूछा कि भाई वहां कहां से कोई ज्योति दिखता है, हमने तो कभी नहीं दिखा। दूसरे दिन इसका पता लगाने के लिए गए और शाम को फिर वही आकर के ऊपर दुतल्ले घर पर वहीं से बैठ करके उधर ही देखने लगे, हरि नाम करने लगे। इतने में देखा चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, शिवास पंडित, गदाधर और उनके जितने परिकर हैं बड़े मृदंग और करताल लेते हुए आनंद से कीर्तन करते हुए झूम रहे हैं। कोई गिर रहा है, कोई लोट रहा है, कोई हा राधे, कोई हा कृष्ण कर करके गिर रहा है, जमीन में लोट पोट रहा है और हजारों की संख्या में उन लोगों को देखा। थोड़ी देर के बाद में ज्योति भी समाप्त हो गई, देखा जी वहां पर कुछ नहीं हो रहा। दूसरे दिन फिर वहां पर गए, अपने आप जिधर से वो लाइट आ रही देखा, क्या रात में देखा एक ताल का वृक्ष है वहां। इसलिए दूसरे दिन उठ करके ताल वृक्ष को निशाना बना करके वहीं से चले। चलते चलते जब वहां पर ताल वृक्ष के निकट में गए तो उन्होंने देखा तुलसी का एक वन और जगह सब खेती हो रही है, बड़ी उपजाऊ भूमि और वहां पर तुलसी का वन है। कहते भाई कौन सा स्थान है, तो इसका नाम मियापुर है। मियापुर, अच्छा, तो ये तुलसी जी के यहाँ पर देखते हैं कि खेती और जगहों पर तो देखते हैं कि बहुत गेहूं चने ये सब हो रहे हैं, चावल हो रहे हैं, यहाँ पर तुलसी का वन लगा हुआ क्यों इतनी जमीन में। उन लोगों ने कहा, मुसलमानों ने, मुसलमान ही वहां पर आसपास में थे, उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर ये धान की खेती करना चाहते हैं, चना गेहूं कुछ होता नहीं है, फिर वही तुलसी हो जाती है, उसको फिर काट करके फेंक देते हैं फिर वही पर हो जाती है, हम लोग तंग आ गए इसलिए इस स्थान को छोड़ दिया। उन्होंने देखा जैसे ये स्थान तो साधारण नहीं है, यहीं पर कीर्तन रात में हो रहा था। अब वहां से लौट करके वृंदावन में आए, वहां पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एक थे। वृंदावन में राधा कुंड के पास में सूर्य कुंड एक है, यहाँ पर श्रीमती राधिका जी सूर्य पूजा करने के बहाने उनसे कृष्ण से मिलती थी और कृष्ण पुरोहित बनकर के उनको सूर्य पूजा कराते थे। कैसे कहते मित्राय स्वाहा, मित्राय मैंने क्या, मित्र सूर्य का एक नाम है मित्राय और दूसरा है जो मित्र, जो कृष्ण हमारे जो सखा हैं, हमारे प्रियतम मित्र हैं, उनके लिए स्वाहा। इसलिए मित्र कृष्ण के लिए यहाँ पर कर दिया और उधर सूर्य के लिए भी, इसलिए वहां पर जो बातें होती थी सब कृष्ण की पूजा, कृष्ण से मिलना होता था, उनकी साथ भी वहां पर आ जाती, तरह तरह की वहां पर लीलाएं होती। वो कहता जरा हमारी बहू का जरा हाथ तो देख लो, कहते मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं हाथ पांच कुछ नहीं देखता, मैं बहुत दूर रहता हूँ उन चीजों से, तुम दूसरे ज्योति के पास ले जाओ। कहने हमारा तो तुम्हारे ऊपर ही विश्वास है, ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं कोई ब्राह्मण का बालक जो इतना तेजस्वी और इतना ब्रह्मचर्य रहने वाला, स्त्रियों के तरफ में देखने वाला नहीं। इस तरह से वहां पर सूर्य कुंड में वो रहते थे, उनका नाम था जगन्नाथ दास महाराज, सिद्ध थे, वैष्णव सार्वभौम उनको कहा जाता था। उनकी उम्र 144 वर्ष की थी, आंखों की पलके ये जो है इसे ढक लेती थी, उसको जब देखना होता तो ऐसे उठा करके देखते थे ने? और चलते नहीं थे, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा उनको टोकरी में रख करके उनके शिष्य जहां कहीं ले जाना होता जाते थे। जब कृष्ण का कीर्तन होता मृदंग का, जबकि जब बजता एकदम 5-6 फुट ऊपर में उछल जाते और कीर्तन करते। इस तरह से कभी कभी बेहोश हो जाते, कभी कुछ कभी कुछ, और बड़े भारी विद्वान से उसमें ब्रजमंडल में, गौड़ मंडल में और जगन्नाथ का क्षेत्र मंडल में सबके एक छत्र वैष्णव से माने हुए थे। उनके पास में गए, उन्होंने कहा कि भाई, उनसे कहा जैसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आजकल मायापुर मियापुर बन गया है, मुसलमानों ने वहां पर दखल करके उसको मियापुर कहते हैं, तो अभी तुलसी बन को हटा नहीं सके। और मैंने रात में ये दिव्य चीजें सब देखी, इसलिए आप सिद्ध महात्मा है, आपको सभी मानते हैं, इसलिए आप चल करके वहां और उस स्थान को प्रकाश कीजिए। उस समय उनके कुछ शिष्य थे, भक्ति विनोद ठाकुर के पास में आए, बोले जी आप तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जज थे, केसों का निपटारा करते थे, हमारा ये केस है। तो ये तुम्हारा केस क्या? तो हमारा केस, हम अपने गुरु जी के साथ में हमारा केस है। केस यह है कि हम लोग हर संसार छोड़ करके आए हैं भजन करने के लिए, राधा कृष्ण की लीलाओं का हम स्मरण करेंगे और हरि नाम करेंगे दिन रात। और ये बाबा जी महाराज गुरु जी हमारे हैं, ये कहते हैं कि बैगन का पेड़ लगाओ, तुलसी का पेड़ पौधा लगाओ, फल फुलारी लगाओ, सब्जियां लगाओ और उसे कृष्ण का भोग होगा। कहीं तुम लोग नाम करेगा, नाम नहीं होगा, बताइए। तो हम लोग घर छोड़ करके ये खेती बाड़ी करने आए थे और इसमें लगा रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा, वो जो कहते हैं ठीक है, अभी तुम माला करेगा, हरे कृष्ण हमारा बेटा कैसा है घर पर, हरे कृष्ण हमारी स्त्री हमारे बिना बड़ी बड़ी दुखी होगी, हरे कृष्ण और इधर में मन गया कहां, संसार के कामों में भोगों में आसक्त हो गया, इधर तुम्हारा मन स्थिर नहीं हो रहा, इधर तुम भजन नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा सुकृति करो जो प्रभु के लिए कृष्ण के लिए तुम कुछ काम करो सेवा। तुम यदि मन ही मन में चिंतन करेगा तो तुमको या तो वो संसार की बातें आएंगी या सो जाएगा, ये भजन भजन नहीं है। इसे ऐसे काम करो जिसमें तुम्हारी नींद न आए, आलस्य न हो और भगवान की कुछ सेवा सुकृति भी हो जाए। इसलिए पहले तुम ये काम करो, तो इसके बाद में जब तुम आगे बढ़ जाएगा, अनर्थ दूर हो जाएगा, तुम लोगों ऐसा करना, भगवान का भजन करना। इस तरह से राय दी उनको। इसके बाद जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज उनके साथ में उनका शिष्य उनके टोकरी में रख करके उनको ले आया। उसमें कलकत्ते के शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार के संपादक अंग्रेजी के, बड़े बड़े बंगाल के लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, रिसर्च के स्कॉलर सर, सब भक्ति विनोद ठाकुर के साथ में कृष्ण की जन्मभूमि मायापुर में पहुंचे। और वहीं पर कीर्तन हो रहा था, जगन्नाथ बाबा जी महाराज टोकरी से निकल करके और एकदम ऐसा लंफ दिया कीर्तन करते हुए, जय सचिनंदन गौर हरी की जय। उन्हीं की ये जन्मभूमि मायापुर है, इसको सब मियापुर कहते हैं, यही इनकी जन्मभूमि है। यही पर सची देवी के गर्भ से एक नीम के पेड़ के नीचे ये चैतन्य महापुरुष हुए और यही से विश्व में सर्वत्र उन्होंने कृष्ण नाम का प्रचार किया जो विश्व में सर्वत्र हो रहा है। कृष्ण नाम से बढ़कर के और कोई चीज नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे राम से मत करो, हरे कृष्ण से करो, इससे जो कुछ भी इच्छा होगी वह संपूर्ण रूप से निश्चित रूप में पूर्ण हो जाएगी। कलिकाल में मूर्ति पूजा, विग्रह पूजा, सेवा, मंदिर, ये सब संभव नहीं है। जो करते हैं वो ठीक नहीं, कुछ लोग यज्ञ करते हैं वो भी ठीक नहीं। अरे शुद्ध घी तो नहीं मिलता, यज्ञ कहां से करेगा? कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलेगा निर्लोभी विद्वान जो ठीक उच्चारण के साथ में उसको कर सके। इस तरह से किसी का चित्त शुद्ध नहीं है, वो अर्चन क्या करेगा? अर्चन के लिए भी तो चीजें जरूरत होती है। कलिकाल में ये सब नहीं है। अभी मुसलमान आएंगे, हिंदू भी मुसलमान हो रहे हैं, ईसाई बहुत भाग बन रहे हैं बड़े गर्व के साथ में। अभी हमारा कोई यहाँ पर सेंट्रल में कोई मिनिस्टर है, उसका नाम मुझे नहीं याद है, कोई उत्तर प्रदेश से केसरी या कौन सीताराम केसरी, उनके बाप ने ऐसा क्यों नाम रख दिया। वो कहते हैं यदि हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगता है तो तुम बौद्ध बन जा, ईसाई बन जा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? धर्म का तो कुछ है नहीं, वो इन चीजों को नहीं समझते हैं। उसको सभी को कहते हैं जैसे खाओ पियो गाय भैंस जैसा, सुअर जैसा तुम रमो, और दूसरा कोई काम, आत्मा की अनुभूति तो है नहीं, भगवत अनुभूति नहीं है, आंखें तो अंधे हैं, कैसे इन चीजों को समझेंगे? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर के साथ में जगन्नाथ बाबा जी आकर के वहां पर खूब जोर से नृत्य करने लगे। उसमें ऐसा मालूम होता था कि ये 15-12-20 वर्ष के ये नौ युवक है। उस समय बंगाल में एक तब चैतन्य महाप्रभु जी की भूमि निर्दिष्ट हुई कि ये गंगा के पूर्व किनारे पर ये महाप्रभु की जन्मभूमि है। अब वहां पर तो विशाल विशाल संबंध बन रहे हैं। उन्होंने एक और काम किया, पहले लोग हरिनाम को धीरे धीरे मन ही मन करते थे। उन्होंने कहा कि हरिनाम को जितने जोर से उच्चारण किया जाएगा तुम्हारा चित्त एकदम समाविष्ट होगा, धीरे धीरे करेगा तो तुमको नींद आएगी मन ही मन में। इसलिए जितना उच्चारण करेगा, जैसे पशु पक्षी कीट पतंग घास पेड़ पौधे हैं ये सभी जीव हैं, उनके कानों में भी जाएगा ये नाम तो उनका भी कल्याण होगा तुम्हारा भी कल्याण होगा, इसलिए उच्च स्तर से नाम करो। उन्होंने एक जगह लिखा, इस संसार में माया के संसार में जब कोई व्यक्ति कोई संत एक जीव को जो भगवान सा विमुख है उसकी चित्त वृत्ति को भगवान की भक्ति के तरफ में लगा दिया जाए, वो कृष्ण सेवा की उसकी वासना हृदय में जम जाए, इससे बढ़कर के कोई उपकार नहीं है। कोटि कोटि अस्पताल बनाने की अपेक्षा, कोटि कोटि स्कूल कॉलेज करने की अपेक्षा, कोटि कोटि रुपयों का दान करने की अपेक्षा एक कृष्ण नाम अधिक श्रेष्ठ है। उसकी चित्त वृत्ति को भगवान की तरफ में मोड़ दो, अपने आप जगत की सारी समस्याएं उसके लिए सुलझ जाएगी। और इसके बिना तुम लाख चेष्टा करो तरह तरह की समस्याएं आएंगी, तुम जीवन में दुखी रहेगा। इसलिए एक जीव को भी यदि भगवान के तरफ में मोड़ दो उसका कल्याण हो जाएगा, तब उसमें व्यभिचार नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा, झूठ नहीं बोलेगा, जीव हिंसा नहीं करेगा, यहाँ तक कि चाय अफीम गांजा भांग जो जो भक्ति के विरोधी हैं हमारे जीवन का विरोधी है अपने आप छूट जाएगा, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। आदमी बिगड़ता है क्यों? इन्हीं चीजों के लिए। एक आदमी भला आदमी है दारू पीने लगा, उसका सर्वनाश उसके परिवार का हो जाता है, गंदी गंदी बातें उसके हृदय में आती हैं। कुछ तो ऐसे हैं आजकल, क्या वो विदेशों से अमेरिका और कहां कहां जाते हैं, हिप्पी बनते हैं, क्या खाते हैं, इतना हीरोइन। एक लड़का था भी कलकत्ते में, हीरोइन किसी प्रकार से खाता था। जब पैसा नहीं मिलता तो अपनी मैया का जितना आभूषण सब चोरी करके के बुलाता, यहां तक कि चोरी डकैती सब कुछ वो करने लगा, उसके बिना रह नहीं सकता। तो ये सब का ये जितने भी उपद्रव अशांति का कारण है ये सब चीजें, अपने आप भक्ति के द्वारा उसका चित्त यदि मुड़ जाता है, जन्म जन्मांतर का क्लेश दूर हो जाता है इस भक्ति के द्वारा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रारंभिक स्तर से लेकर और गोपी भाव के अंतिम स्तर तक उन्होंने अपने पुस्तकों में लिखा। एक साधारण व्यक्ति से अभी देखा जैव धर्म यहां पर कहीं रखा था, उसने एकदम निम्न स्तर से लेकर और अंतिम स्तर तक गोपियों तक उनके भावों को पाया जा सकता है उन ग्रंथों को पढ़ने से। कैसे साधन किया जाता है, कैसे साधन हमारा होना चाहिए, साधन किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं, ये सब का उन्होंने परिभाषा देकर के बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। हम लोगों को उसको अध्ययन करना चाहिए यदि भक्ति हम चाहते हैं, उनके आदर्शों को हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। उनके चरित्र में बहुत सी विशेषताएं हैं। वृंदावन में आए थे, उन्होंने उस समय में राधा कुंड में जाने के लिए रास्ता नहीं था, गोवर्धन में जाने के लिए रास्ता नहीं, सब वो क्या होते हैं ना कंजर जानते हैं आप लोग, कंजर वो गाड़ी छकड़े रखते हैं, स्त्रियां उनके पास में होते हैं, दिन में तो वो चीजों को बेचने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और चोरी के लिए देख करके, और रात में डकैती डालते हैं, बंजारे, उनका काम ही है यही सब करना, बड़े उपद्री और ये होते हैं, नोटोरियस होते हैं, उनको गवर्नमेंट भी दबा नहीं सकती। तो इस तरह से वहां उनके डर के मारे कोई अच्छा आदमी नहीं जाता था राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन। जब ये आए थे जगन्नाथ दास जी ने कहा, अरे आप तो गवर्नमेंट के आदमी हैं कुछ यहाँ पर व्यवस्था तो करो, जो लोग अच्छे अच्छे साधक लोग गोवर्धन में रह सकें, गोवर्धन में पूजा कर सकें, परिक्रमा कर सकें, तब वहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिल करके और उनको कस्टम करके ऐसी सारी व्यवस्था करेगी। धीरे 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 सब लोग वहाँ पर जाने लगे और वहाँ पर परिक्रमा होने लगी और तब से इसकी बढ़ती होने लगी। आज उस भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव तिथि है, आज वो हम पर कृपा करें सब लोगों पर, जैसे कि हम लोगों को शुद्धा भक्ति हो। ये समझे कि हम जन्मांतर से कृष्ण के दास दासी हैं। अभी जो स्त्री पुरुष हम लोग देख रहे हैं ये हमारा स्वरूप नहीं है, हो सकता है इसके पहले कितने बार पुरुष बने हों स्त्रियां, और पुरुष लोग बने हों स्त्री बने हों, कोई गाय बैल घोड़ा सुअर गधे मछली, कभी देवता कभी गंधर्व कभी कुछ बने हों। अनंत काल से हम लोग घूम रहे हैं इसमें। यदि इस जीवन में यदि हम लोगों ने भगवान को नहीं पाया तो ये जीवन वृथा चला जाएगा, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। भगवान ने कुछ बुद्धि दी है इसलिए बुद्धि से विवेचन करना चाहिए। सब जगहों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है किंतु गीता भागवत में गड़बड़ी नहीं होगी, वेदों में गड़बड़ी नहीं होती, इसलिए उसके हिसाब में जीवन चलाने की चेष्टा करनी चाहिए। गीता में लिखा मत्तः परतरम किंचित न अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे बढ़कर के कोई भी तत्व नहीं है। इस गीता की सरल सी बात को हम लोग समझ नहीं पाते। देवता देवता इत्यादि जो हैं ये धन संपत्ति कुछ दे देंगे किंतु विचार नहीं करेंगे इससे इसका काश सर्वनाश होगा या क्या होगा, ये नहीं बतला सकते। किंतु कृष्ण में ऐसी बात नहीं, इन चीजों को नहीं देते, इन चीजों की वासनाओं को दूर कर देते हैं। इसलिए गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदि कल्याण चाहते हो, कृष्ण कह रहे हैं ये सोने के थाल में अमृत परोस रहे हैं कृष्ण, किंतु लोग ग्रहण नहीं करते। गीता पढ़ते हैं खूब किंतु उसके उपदेशों को नहीं मानते हैं। हम लोग गीता पढ़े हैं उपदेशों को भी मान करके चलेंगे। सब धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का परित्याग कर हमारे शरण में आ जाओ। यदि इसे कुछ पाप भी लगता है दोष भी लगता है तो इन सब दोषों को पापों को मैं दूर भूत कर दूंगा। आश्वासन देते हैं कितना, माम एव जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते, जो लोग हमारा आश्रय ग्रहण करते हैं माया ये दूर हो जाती है। माया किसको कहते हैं, मा या, मा माने नहीं, जा माने जो, जो नहीं है उसको हमने वही समझ रखा है। पहले जन्म में हमारा कोई शत्रु था किंतु इस जन्म में हमारा बाप हो गया, और जो मित्र था वो बन गया शत्रु कर्मों के फेर से। कोई लड़का पहले जन्म था वो स्त्री बनकर के हमारी आ गई। अब ये संबंध नित्य नहीं है, इस चीज को समझना चाहिए। कर्मों के फेर से ये चीजें मिली ही हैं। न हम पुरुष हैं न स्त्री हैं, हम कृष्ण के दास दास हैं, इस चीज को समझना चाहिए। स्वरूप हमारा यही है, इसलिए इस जगत में आए हैं, इसकी उपलब्धि हो जाए। यदि नहीं कर पाते जीवन वृथा चला जाएगा, इसलिए ये सब चीजों के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा लिखा। भक्ति विनोद ठाकुर जी एक दिन अपने आश्रम में बैठे हुए थे, देवता लोग उनके सामने पधारे। आज वहां पर देव सभा हो रही थी और वहां पर एक विषय का विचार हो रहा था, क्योंकि विचार में निर्णय नहीं हो सका कि ये क्या ठीक है क्या गलत है, आपको कृपा करके पधारना होगा। ये थे कौन, महाप्रभु के लीला के तो ये परिकर है ही हैं, कृष्ण लीला के ये कमल मंजरी हैं, उन्होंने अपना परिचय दिया है, झूठ नहीं बोल सकते। ये इतने ग्रंथ को लिखने वाले और संसार के जगत गुरु वो लिख रहे हैं कि हमारा नाम क्या है, कमल मंजरी। सेवा क्या है, तांबूल या कर्पूर सेवा कृष्ण की, वस्त्र कैसे हैं, शरीर कैसा है, ये सब चीजों का विवरण पूरा दिया जब मैं क्या हूं। इसलिए कृष्ण लीला की मंजरी है, सखी है, राधिका जी के एकांत सहेली है, इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में ये लिखा गया, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने, सच्चिदानंद भक्ति विनोद, ये जिनका नाम है। गौर शक्ति स्वरूपाय, गौर चंद्र की शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है, ये गदाधर के स्वरूप जैसे ये हैं, इनकी कृपा से कृष्ण भक्ति सहजी में हो सकती है, इसलिए मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। देवता लोग उनको ले गए वहां, बोले कि भाई कल मीटिंग में ये बातें हो रही थी, जो गीता में एक वाक्य है, अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भात साधुरेव सम्मन्तव्य सम्यक् दवसितो हि सः। इसका सीधा साधा अर्थ यह है, अपिचेत्सु दुराचारो, चेत माने यदि, अपि माने भी, यदि अत्यंत दुराचारी भी हो, सुदुराचारी माने अत्यंत दुराचारी, दुराचार किसको कहते हैं, अत्यंत व्यभिचारी, जो दूसरों की पत्नियों को, स्त्रियों को बेटी, माता और कन्या नहीं जानता और उनके प्रति बुरी भावना रखता है, पशु के समान होता है, डकैती डालने वाला, अपनी मातृहत्या करने वाला, गो हत्या करने वाला, ये सब दुराचार है, सुदुराचार। घर में किसको आग लगा दिया, हरे भरे पेड़ों को काटने लगा, जिससे लोगों की भलाई होती है, ऐसे कामों को उजाड़ करने लग जाए, यह दैत्य दानवों का काम है। उन्होंने अपिचेत सुदूरा, इधर में आ जाइए, अपिचेत सुदूराचारो, अत्यंत सुदूराचारी व्यक्ति भी, इधर में आ जाइए, कीर्तन में, दुराचारी व्यक्ति हो, भजते माम अनन्य भात, यदि हमारा अनन्य भजन करता है, यदि दुराचारी व्यक्ति कभी भी अनन्य रूप से भगवान का भजन ही नहीं करता, तो अनन्य की बात कर, अनन्य किसको कहते हैं, मुझे माने कृष्ण कह रहे हैं, मेरा अनन्य भजन करता है, अनन्य भजन माने क्या, कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का नहीं, सब हमारे लिए प्रणाम है, मैं सबको प्रणाम करता हूं, किंतु भजन करूंगा किसका, केवल राधा कृष्ण का ही भजन करूंगा, और किसी का नहीं। और का अनादर करते हो, अनादर कहां हुआ, भजन नहीं करना अनादर नहीं है, मैं उसकी निंदा करूं, उसको गाली दूं, उसके विरुद्ध यदि कहूं तो ये अनादर हुआ, मैं कृष्ण का अनन्य, उनको कृष्ण का, किसी को जो अवतार है उनको अवतार समझता हूं, इसलिए किसी को देवता लोगों को सम्मान देता हूं कि ये भगवान के ये कार्य करता है, उनमें भगवान की शक्ति काम कर रही है, इसलिए कुछ कुछ तक वो देते हैं, इसलिए जीव मात्र को स्थिति से लेकर के ब्रह्मा तक सबको मैं प्रणाम करता हूं, बस वैष्णव लोग ऐसे होते हैं। किंतु यदि सुदुराचारी, अकंत दुराचारी हो, तो भी भजते आम अनन्य बात, यदि मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं, हमारे अतिरिक्त और किसी का नहीं, और हमारे प्रसन्नता के अतिरिक्त अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, तब अनन्यता होगी। अनन्यता में दो बात है, खूब जरा अच्छी तरह से समझो, एक कृष्ण के अतिरिक्त और दूसरे का नहीं, दूसरी बात क्या है, कृष्ण की प्रीति के लिए ही, अपनी प्रीति के लिए, दूसरों की प्रीति के लिए नहीं, कृष्ण प्रसन्न हो, बस एक गोपी अंश की चरम उदाहरण है, इससे बढ़कर के कोई उदाहरण नहीं, ब्रजवासी लोग इसके उदाहरण है, इसलिए ऐसा अनन्य हो। किंतु ऐसा अनन्य भजन करने वाला यदि अति से सुदुराचारो, अत्यंत दुराचारी है, तो अति से सुदुराचार भजते मान अन्य बात साधु रे व सम्मन्तव्य, उसको साधु ही समझो, कौन कह रहा है, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, उसको साधु मानो, यदि नहीं मानता तो क्या होगा, तुम्हारा बड़ा भारी अपराध हो जाएगा, साधुरे मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो, उसने सम्यक व्यवसाय को आरंभ किया है। व्यवसाय माने क्या? यहाँ पर भक्ति व्यवसाय है। कोई कर्म का बिजनेस कर रहे हैं, कोई मशीनों का बिजनेस, कोई कुछ का, कोई कुछ का, यहाँ पर बिजनेस हुआ क्या, व्यवसाय क्या, ये कृष्ण भक्ति का व्यवसाय जो है विशेष रूप से व्यवसाय, उसमें अवस्थित होकर के ये कर रहे हैं, उसको साधु समझो। क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वसत्थंति निगच्छति कौंते जाना ही न में भक्ता प्रणश्यति। अब वहां पर कहते हैं प्रति जाना ही, अर्जुन कहते तुम प्रतिज्ञा करो कि हमारे भक्तों का विनाश नहीं होता। क्यों? आप ही कहने प्रतिज्ञा करते हैं हमारे भक्तों का विनाश नहीं हो, मैं उनकी रक्षा कर, नहीं मेरी बात कभी टल जाती है, भीष्म ने आकर के हमारी बात को बदल दिया, बीच बीच में हमारी बातें रह जाती हैं, भक्त लोगों की बातें माननी पड़ती है, इसे हमारे भक्त जब भी कह देंगे तो मैं उस बात को से तल से मल नहीं हो सकता, इसलिए यह बात परम रूप में सत्य है। देवता लोग कह रहे हैं कि भगवान का भजन करने वाला दुराचारी हो ही होता है, दुराचारी लोग भी भगवान का भजन करते हैं और उनको भक्त माना जाए कि नहीं, यही हम लोगों में संदेह है। तरह तरह से युक्ति तर्क के द्वारा हम लोग इसकी मीमांसा नहीं कर सके, ये दुराचारी कैसे भक्त होगा। इसी जगह में कर रहे हैं, एक दुराचारी व्यक्ति अजामिल था, मां दुराचारी क्या करता था, खा तो ब्राह्मण का बालक, समस्त शास्त्र उसने पढ़े, एक बड़ी सुंदर स्त्री से, ब्राह्मणी से, विदुषी महिला से, विद्वान महिला से उसकी शादी हुई, माता पिता की सेवा करता, यज्ञ में उनके यज्ञ के लिए लकड़ी लाता, उनके समस्त आदेशों को पालन करता, उनका पैर दबाता, सब आदेश को पालन करता। एक दिन पिताजी की यज्ञ करने के लिए कुछ लकड़ी की सूखी जरूरत पड़ी, वो जंगल में पास ही के जंगल में गया और लकड़ी ला रहा था, चुन रहा था, इतने में उसने देखा एक कोई नीच जाति का व्यक्ति, एक कोई स्त्री थी पुंशली, पुंशली बने क्या बेस्या जैसी, वो उसके साथ में दारू पी रहा और गंदी हरकतें उसके साथ में कर रहा, देखते ही उसका मन उसके आप से निकल गया, वहां से चला आया, किंतु उस दृश्य को अपने हृदय में लेता आया, बहुत भूलने की चेष्टा की, मैं ब्राह्मण का बालक, शास्त्रों का अध्ययन किया है, यह बहुत गंदी बात है, किंतु हृदय से नहीं निकाल सका, जितना ही इसको निकालने की चेष्टा करता उसकी बात उसके अंदर में जमती चली जाती। घर जब आया, रहा नहीं गया, घर के चीजों को चोरी लेकर करके और फिर वो उसी बेस्या के पास पहुंच गया, उसके साथ में दारू पिया, उसके साथ में रहने लगा, सारी चीजें घर की बिक्री कर दी, अपने बच्चों को छोड़ दिया, विधवा, अपनी स्त्री को छोड़ दिया, पिता माता की सेवा छोड़ दी और उसी के पास में पहुंच गया, उसके साथ में 8 लड़के पैदा हुए। अब वहीं से कहां से आए खाने पीने के लिए, दारू कहां से आए, अब वो चोरी चमारी लूट मार डकैती हत्या सब करने लगा। जब 80 वर्ष का हुआ तो उस छोटे बच्चे का नाम जिसका नारायण था, उसकी मृत्यु आई काल, उसी समय छोटे बच्चे का नाम संस्कार वस्त्र जो नारायण रख दिया था, अब कोई नारायण का नाम याद आया, नारायण नारायण मैंने जल्दी से आओ, बहुत भयंकर आकृति उसको दिख पड़ी, नारायण नाम कहते हुए ही देखा 3 आए बड़े जमदूत, तन मन और वचन से करने वाले पापों के लिए प्रतीक के रूप में वो 3 आए जमदूत, और उसी समय जो नारायण नाम उच्चारण किया नारायण, ये चतुर्भुज बने हुए 4 विष्णु के दूत वहां पर उपस्थित हुए, डरो मत, मां भयम मां भयम मत डरो, देखा कि वो उसके प्राण निकाल रहे हैं और ये उसको ऐसे रोक रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने पूछा तुम कौन है, क्यों आया, उन्होंने कहा हम जम के दूत हैं, आए हैं इसके प्राणों को ले जा रहे हैं, ऐसा जघन्य पापी जगत में कोई नहीं, इसको जम दंड वहां पर मिलेगा, हम दंड महाराज जम महाराज के पास ले जाएंगे। आप लोग कौन है? तो हम लोग विष्णु के दूत हैं। किस लिए आए? तुम ये इस हरकत से बाजाओ, तुम ले यहां से चले जाओ। धर्म के ठेकेदार नहीं जानता कि धर्म किसको कहते हैं, तो इसने क्या धर्म किया? तो एक जो विष्णु का नाम, नारायण का जो नाम उच्चारण किया है, इसका पूर्व पूर्व कोटि कोटि जन्म के पाप इसके दूर हो गए हैं। अब इसको कोई पाप नहीं है। जितना जगत में पाप हो सकता है, सब पापों को करने में एक भगवान के नाम से उसका सबका प्रायश्चित हो जाता है। अब ये साधु है, अब इसके अंदर में कोई पाप की वासना नहीं है। तो अभी तो नारायण तो बहुत दिनों पहले रखा था, किंतु अभी तक तो जो पाप कर रहा था उसका पाप ऐसे है जैसे कोई साइकिल या मोटर चलाया, कार, और कार के बंद कर देने पर भी वो बहुत दूर तक चली जाती है। एक रेल एक माइल चली जाएगी जो फोर्स से आ रही है, फोर्स को बंद करने पर भी। ये अभ्यास है। इसे अब जो उसका विषैला दांत था कर्म का, वो तो टूट गया। ऊपर से दिख रहा है ऐसा कर्म कर रहा है, किंतु अब यथार्थ में वैसा इसका फल नहीं होगा। भगवान का नाम का करने से इसकी जितनी प्रवृत्तियां थी वो सब कुछ ध्वंस हो गई। अब इसको साधु मानो, क्षिप्रम भाव सिद्धात्मात्मा, ये तो साधु ही है। इसलिए भगवान का जो भक्त अनन्य भजन करने वाला है, उसमें जो ऊपर से दुराचार यदि देख भी रहे हैं, किंतु उसको साधु मानो। बाई चांस पैर फिसल गया,